एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। सबके लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक आज आपके सामने फिर से परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूँ। आज का मेरा शीर्षक है धनी और गरीबों के लिए खुशखबरी। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे संग हो और हमें अगुवाई कर, जैसा हम तेरे वचनों को सुनते हैं और जैसा मैं तेरा वचन को बोलता हूँ पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे, मुझे तेरे बुद्धि से चला और जितने भी श्रोतागण हैं पिता उनके मन हृदयों को खोल, जैसे वे सुनते हैं तेरे प्रेम को समझे और तेरे नज़दीक आ सके। इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। तो चलिए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। फिलिस्तीन में रोमी शासन के शासकों द्वारा मसूल लेने वाले सबसे अधिक घृणा की नज़र से देखे जाते थे। यह बात सच थी कि विदेशी शासन द्वारा थोपा गया कर यहूदियों को लगातार चिढ़ पैदा करता रहता था। यह एक प्रकार से उन्हें याद दिलाता रहता था कि वे स्वतंत्र नहीं हैं और कर के उहागने वाले लोग रोमियों द्वारा सताए जाने वाले केवल एक माध्यम ही नहीं थे, बल्कि वे लोग अपने आप भी एक लूटने वाले थे जो लोगों की कीमत पर अपने को धनवान बना रहे थे। जब कोई यहूदी रोमियों द्वारा इस कार्य को स्वीकार कर लेता था तो उसे देश और जाति के प्रति सम्मान को घटाने की दृष्टि से देखा जाता था। वह एक धर्म त्यागी के रूप में घृणा का पात्र होता था और उसे समाज का निचतम व्यक्ति माना जाता था। इसी स्तर का व्यक्ति लावी मती था, जो गंसरेत के चार शिष्यों के चुने जाने के बाद मसीह की सेवकाई के लिए बुलाया गया था। फरीसी लोगों ने मती को उसके व्यवसाय के अनुसार मान्यता दी थी, परंतु यीशु ने उसमें एक ऐसा मनुष्य देखा जो खुले मन से सच्चाई को ग्रहण करने वाला था। मती ने उद्धारकर्ता के उपदेशों को सुना था। परमेश्वर की आत्मा ने जब उसे उसके पापमय जीवन को महसूस कराया तो उसकी इच्छा हुई कि मसीह की सहायता ले, परंतु रबी लोगों द्वारा वह जाति से बाहर निकाला हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसने सोचा भी नहीं था कि वह महान शिक्षक उस पर कभी ध्यान देगा। एक दिन जब अपनी महसूल लेने वाली चौकी पर बैठा हुआ था तो उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने अपनी ओर संकेत करते हुए सुना, मेरे पीछे हो लो। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई प्रसन्न नहीं, और ना यह विचार आया कि अच्छे खासे व्यवसाय छोड़कर गरीबी, परिश्रम और कठिनाइयों में बदल लेगा। उसके लिए तो यह काफी था कि वह यीशु के साथ रहेगा, उसके वचनों को सुन सकेगा और उसके कार्यों को करने में सहकर्मी हो सकेगा। पहले वाले चेलों की भावना भी इसी प्रकार की थी। जब यीशु ने पतरस और उसके साथी को बुलाया तो वे तुरंत अपनी नावों और जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। इनमें कुछ चेलों के तो मित्र और परिवार के लोग भी थे जिनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उन्हीं पर थी, परंतु जब उन्हें मुक्तिदाता का निमंत्रण मिला तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई या यह प्रश्न नहीं किया कि हम कैसे जीवित रहेंगे, बिना जीविका के परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। वे उस बुलावे का आज्ञा पालन किए और बाद में जब यीशु ने उनसे पूछा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। इसे हम लूका 22 का 35 में पाते हैं। चाहे धनवान मती हो या गरीब पतरस और इंद्रियास हो, एक समान परीक्षा उनके सामने थी और एक समान ही उनकी समर्पणता थी। सफलता की उस घड़ी में जब उनके जाल पूर्ण रूप से मछलियों से भरे पड़े थे और पुराने जीवन की मान्यताएं मजबूत थी, यीशु ने झील के किनारे चेलों से कहा कि सब कुछ छोड़कर सुसमाचार के कार्य के लिए उसके साथ हो लें। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती है, चाहे वह संसारिक सुविधाओं के प्रति हो या मसीह के साथ सहभागिता की बात हो। सिद्धांत हमेशा एक सा ही है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर मसीह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसारिक हानि की चिंता ना छोड़ दे। तब तक वह चेला नहीं बन सकता और सही रूप में उसका सहकर्मी नहीं हो सकता है। जब मनुष्य महान उद्धार की बड़ाई करते हैं तो मसीह के आत्म बलिदान जैसा उनके भी जीवन में दिखाई देगा। जिस भी मार्ग पर ले जाने की वह अगुवाई करता है, खुशी के साथ वे उस मार्ग पर चलेंगे। मती को मसीह के शिष्य बनने के लिए बुलाए जाने पर लोगों में क्रोध की लहर दौड़ गई। एक इतने महान धार्मिक गुरु द्वारा एक महसूल लेने वाले को अपना सहायक बना लेना धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और राष्ट्रीय प्रथा के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध था उनके नजर में, उनकी दृष्टि में। फरीसियों को आशा थी कि लोगों की धर्मांधता को भड़काकर मसीह के प्रति उनकी अच्छी भावनाओं को बदल देंगे। मसूल लेने वालों में एक अच्छी खासी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उनके हृदय ईश्वरीय शिक्षक की ओर खींच गए। चेला बन जाने की खुशी में मती अपने पुराने साथियों को मसीह के पास लाने की इच्छा करने लगा। वह इस संबंध में उसने अपने घर में एक जेवनार का आयोजन किया और अपने मित्रों तथा संबंधियों को न्योता भेजा। उसमें केवल महसूल लेने वाले ही नहीं, परंतु वे सब लोग भी थे जो उन्हीं के स्तर के थे तथा समाज से बहिष्कृत व संदेहास्पद पड़ोसी लोग थे। उन्हें भी न्योता भेजा गया था। यह जीवनार यीशु के सत्कार में दिया गया था और वह उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखलाया। यीशु मसीह ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखलाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि इससे फरीसी लोग नाराज होंगे और लोगों की नज़र में गिराने और उनसे अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार का नियम उसके व्यवहार में रुकावट नहीं डाल सकता था। प्यारो, उसकी नज़र में बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं था। किसी भी प्रकार का नियम उसके व्यवहार में रुकावट नहीं डाल सकता था। उसके हृदय में तो प्यासी आत्माओं को जीवन का जल पिलाना था। महसूल लेने वालों की मेज पर यीशु मुख्य अतिथि के रूप में आकर बैठा और सामाजिक प्रेम और सहानुभूति द्वारा उसने मानवता की प्रतिष्ठा का आदर किया और लोग चाहे कि वे उसके विश्वास के योग्य ठहरें। यीशु के आशीष और सामर्थ भरे शब्द उनके प्यासे हृदयों को तृप्त करने लगे। उनमें नई आशाएं जाग उठी और समाज से अलग किए हुए इन लोगों के सामने एक नए जीवन की संभावनाएं दिखाई देने लगीं। इस प्रकार की पार्टियों में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो यीशु के उपदेशों और शिक्षाओं को तब तक स्वीकार नहीं किए थे जब तक कि उसका स्वर्गारोहण नहीं हो गया। जब पवित्र आत्मा की वारिस हुई थी और एक दिन में 3,000 लोग मसीह पर ईमान लाए थे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने महसूल लेने वाले की मेज पर मुक्तिदाता के वचन पहली बार सुने थे और इनमें से कुछ लोग तो बाद में सुसमाचार के प्रचारक बने। स्वयं मती उस भोज वाले दिन के मसीह के प्रवचन का जीता जागता उदाहरण था। तिरस्कृत महसूल लेने वाले एक अत्यंत समर्पित प्रचारक बने। मसीह की स्वयं की सेवकाई के समय अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते रहे। जब रबियों ने मसीह को मती के भोज में शामिल होने को सुना तो उन्हें उस पर इल्जाम लगाने का अवसर मिल गया, परंतु उन्होंने शिष्यों के माध्यम से यह काम करना चाहा। उन्हें आशा थी कि वे उनकी कट्टरता को भड़काकर शिष्यों को उससे अलग कर लेंगे। उनकी योजना यह भी थी कि वे शिष्यों से मसीह की शिकायत करेंगे और शिष्य लोग मसीह से जाकर जवाब मांगेंगे और इस प्रकार से उनका चलाया हुआ तीर सीधे मसीह को चोट पहुंचाएगा। इस विधि से शैतान तभी से अपना कार्य करता आ रहा है जब उसने स्वर्ग में विद्रोह किया था। और जितने लोग इस तरह की फूट डालने का कार्य करते हैं वे उसी की आत्मा द्वारा बहकाए जाकर करते हैं। डाह करने वाले रबियों ने चेलों से पूछा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? चेलों द्वारा उत्तर देने के लिए यीशु ने प्रतीक्षा नहीं किया बल्कि स्वयं ने कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। फरीसी लोग यह दावा करते थे कि आत्मिक रूप से वे संपूर्ण हैं, भले चंगे हैं, इसलिए किसी वैद्य की उन्हें आवश्यकता नहीं है, जबकि वे लोग महसूल लेने वालों और अन्य जातियों को आत्मिक रूप से विनाश होने वाले लोग समझते थे। तब क्या यह उसका कार्य नहीं था कि वैद्य बनकर उन लोगों के बीच जाए जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी? फरीसी लोग उस समय तो चुप रह गए, परंतु अपनी शत्रुता में और दृढ़ निश्चयी बन गए। अगली बार वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों के पास गए ताकि उन्हें मुक्तिदाता के विरोध करने की कोशिश करें। स्वर्ग का राजकुमार अपने लोगों के बीच था। परमेश्वर का महानतम वरदान इस जगत को दे दिया गया था। गरीबों के लिए खुशखबरी देने मसीह आया कि उन लोगों को अपने राज्य का वारिस बनाए। धनवानों के लिए खुशखबरी, उन्हें वह सिखाया कि अनंत धन को कैसे प्राप्त करें। अज्ञानियों के लिए खुशखबरी, वह उन्हें उद्धार के लिए धनवान बनाएगा। विद्वानों के लिए खुशखबरी, वह उन पर अथाह गहरे रहस्यमय भेदों को खोलेगा। संसार की नींव डालने से पहले की छिपी सच्चाइयों को मनुष्यों के सामने उद्धारकर्ता के कार्यों द्वारा खोला जाएगा। कानून द्वारा बनाया गया धर्म कभी भी आत्मा को मसीह की ओर ले जाने में सहायक नहीं हो सकता। इसमें प्रेम नहीं होता, यह बिना मसीह का धर्म है। अपने आप को सिद्ध करने की चाह द्वारा उपवास रखना या प्रार्थना करना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आराधनालय की आराधनाओं में शामिल होना, धार्मिक रीतियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, दिखावे की विनम्रता प्रकट करना, जबरदस्ती का बलिदान चढ़ाना, इस बात को उजागर करता है कि इसका करने वाला अपने आप को धार्मिक समझता है और स्वर्ग के लिए हकदार है। परंतु यह सब धोखा है। हमारे अपने काम कभी भी उधार नहीं खरीद सकते हैं। जैसा मसीह के दिनों में था, वैसा ही आज हमारे दिनों में भी है। फरीसी लोग अपनी आत्मिक निर्धनता को नहीं जानते थे। वैसों को पवित्र शास्त्र से यीशु का वचन आता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। विश्वास और प्रेम आग में ताया हुआ सोना है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे मन और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता, यह लिखा गया है भजन संहिता 51:17 में। इससे पहले कि पूर्ण रूप से यीशु में विश्वासी बने, इंसान को अपने स्वयं को खाली कर देना अति आवश्यक है। जब खुद ही से इनकार कर दिया गया, तब प्रभु उसको एक नया इंसान बना देगा। नई बोतल में नया दाखरस भर दिया जाएगा। मसीह का प्रेम विश्वासी में नया जीवन फूंक देगा। जो व्यक्ति हमारे विश्वास के प्रवर्तक और संपूर्ण कर्ता की ओर देखता रहेगा, उसमें मसीह के चरित्र की छाया दिखाई देगी। तो हम देखते हैं मती के जीवन से कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कर सकता है। जो उसको अपनाते हैं, जो उसके पास आते हैं, जो अपने कमी को समझते हैं, उसके जीवन को यीशु मसीह पूरा बदल दे सकता है। लेकिन फरीसी सदुगी लोगों के समान, जो अपने आप को धर्मी महसूस करते हैं, अपने आप में परिपूर्ण समझते हैं, उनके लिए स्वर्ग का राज में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि वे परमेश्वर का सहायता नहीं लेते हैं। वे स्वयं की कार्यों पर, स्वयं की शक्ति पर वह निर्भर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर का राज में प्रवेश होना असंभव है। परंतु जो लोग अपने कमजोरी को समझते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी सहायता लेते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं उसके उसकी कामों के लिए, उसके सेवा के लिए, जैसा कि मती लेवी मती ने किया, यीशु मसीह उसको अपनाते हैं, उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने काम के लिए बड़े तौर से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेवी मती यीशु मसीह का एक बड़ा विश्वासी चेला बना और वह यीशु मसीह के लिए उसका जीवन के विषय लिखा, एक सुसमाचार लिखा, और जिसे वह लोगों को दिया, दुनिया में बांटा, लोगों को दिया कि वे उसे पढ़ें और सच्चाई को जानें और स्वर्ग के राज में कैसे जा सकते हैं उसके लिए तैयारी करें, उसको जानें। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम उसकी ओर अपना दृष्टि लगाएं और मती के समान उसके पीछे चले, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दे और कहे कि हे यीशु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मुझे चेला, मुझे तेरा सच्चा चेला बना और मुझे तेरा सच्चा सेवक बना। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे सुरक्षा के लिए आज हमें मौका दिया कि हम तेरे वचनों को सुन सके। तू हमें बुद्धि दे, तू हमें ज्ञान दे, तू हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला प्रभु, ताकि हम तेरे गुण बातों को समझ सके, हम तेरे प्रेम को समझ सके और हम तेरे बुलाहट को समझ सके और हम तुझे ग्रहण करें पिता और हम तेरे पीछे चलने वाले बने। जिस तरह तूने लेवी मत्ती को तेरा एक बहुत ही उपयोगी चेला बनाया, हमें भी तेरा चेला बना, तेरा दास बना और तेरा राह में अगुवाई कर। हम तुझ में समर्पित होते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।